आकाशवाणी गोरखपुर से क्षेत्रीय समाचार। नमस्कार, समाचार बुलेटिन के साथ मैं वेद प्रकाश पाठक। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बजट सत्र के चौथे दिन राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा के दौरान आज कहा कि उत्तर प्रदेश देश की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की दिशा में अग्रसर है। उन्होंने कहा कि जब उनकी सरकार आई थी तब राज्य की अर्थव्यवस्था 12 लाख करोड़ रुपए थी, जो इस वित्तीय वर्ष के अंत तक 27.5 लाख करोड़ रुपए हो जाएगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार वर्ष 2029 तक राज्य की अर्थव्यवस्था को $1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाने के लिए प्रतिबद्ध है।
आदरणीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से उनके विजन के अनुरूप उत्तर प्रदेश ने $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनने की दिशा में एक बड़े कार्यक्रम को आगे बढ़ाया है। हमने 2022 से इसके लिए एक व्यवस्थित कार्य योजना को आगे बढ़ाया है।
मुख्यमंत्री ने प्रदेश की अर्थव्यवस्था में महाकुंभ के आयोजन का भी उल्लेख किया।
उत्तर प्रदेश के इस पोटेंशियल को आज जिसको देश और दुनिया देख रही है, महाकुंभ के इस आयोजन के साथ हम जोड़ के देख सकते हैं। अकेले महाकुंभ का एक आयोजन उत्तर प्रदेश की इकोनॉमी में 3 लाख करोड़ रुपए से अधिक की ग्रोथ करने वाला है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में हर एक सेक्टर में बदलाव हुआ है और इसके परिणाम स्वरूप विगत 8 वर्ष में राज्य में 6 करोड़ से अधिक लोगों को गरीबी रेखा से ऊपर उठाने में सफलता मिली है। प्रयागराज महाकुंभ में प्रतिदिन करीब 1 करोड़ से अधिक श्रद्धालुओं के पवित्र संगम पर स्नान का सिलसिला जारी है। आज भी शाम 4 बजे तक 1.1 करोड़ से अधिक श्रद्धालु महाकुंभ में स्नान कर चुके थे। इसी कड़ी में असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा और केंद्रीय मंत्री आरसी पाटिल ने परिवार के साथ संगम में स्नान कर पूजा अर्चना की। 26 फरवरी को महाशिवरात्रि के साथ ही महाकुंभ का समापन हो जाएगा। इस महत्वपूर्ण स्नान पर संभावित भारी भीड़ की सुविधा और सुरक्षा व्यवस्था की तैयारियों को देखने के लिए प्रदेश के मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह और पुलिस महानिदेशक प्रशांत कुमार आज प्रयागराज पहुंचे। उन्होंने मेला क्षेत्र में तैयारियों का जायजा लिया और मेला प्रशासन के साथ समीक्षा बैठक की। इस बीच प्रदेश के सभी जेलों में आज से कैदियों को संगम के पवित्र जल से स्नान की सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है। कारागार मंत्री दारा सिंह चौहान ने आज आदर्श कारागार लखनऊ से इसकी शुरुआत की। इसी क्रम में प्रयागराज के केंद्रीय कारागार नैनी और जिला कारागार में 2400 से अधिक, अयोध्या के मंडली कारागार में 770 और जौनपुर जिला कारागार में 909 कैदियों समेत प्रदेश के कई जिलों में बड़ी संख्या में कैदियों ने पवित्र स्नान किया। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री जेपी नड्डा एक दिवसीय दौरे पर आज वाराणसी पहुंचे। उन्होंने सर्किट हाउस में बीएचयू के चिकित्सा विज्ञान संस्थान के अधिकारियों के साथ बैठक कर इस संस्थान को एम्स का दर्जा मिलने पर इसकी तैयारी तथा किए गए कार्यों की समीक्षा की। काशी विश्वनाथ मंदिर में दर्शन पूजन करने के बाद केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री नमो घाट पर काशी तमिल संगमम में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हो रहे हैं। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने आज वाराणसी स्थित बनारस रेल इंजन कारखाना में निर्मित विद्युत रेल इंजन WAP-7 को हरी झंडी दिखाकर राष्ट्र को समर्पित किया। इस विद्युत रेल इंजन की क्षमता 6000 हॉर्स पावर और गति 140 किलोमीटर प्रति घंटा है। इसे सभी प्रकार की यात्री, मेल और एक्सप्रेस ट्रेनों को खींचने के लिए डिजाइन किया गया है। वाराणसी दौरे पर आई वित्त मंत्री ने आज नवनिर्मित पर्यवेक्षक विश्राम गृह और अमृत कानन सामुदायिक पार्क का भी उद्घाटन किया। वाराणसी जिले के मिर्जा मुराद थाना क्षेत्र में वाराणसी प्रयागराज हाईवे पर एक खड़े ट्रक से आज सुबह तीर्थयात्रियों की कार टकरा गई, जिसमें महाकुंभ से लौट रहे पति पत्नी समेत 5 लोगों की मौत हो गई। इस दुखद घटना में घायल कार सवार अन्य लोगों का इलाज कराया जा रहा है। मृतक श्रद्धालु कर्नाटक राज्य के रहने वाले थे। मौसम विज्ञान विभाग ने इस सप्ताह 27 फरवरी तक मौसम शुष्क रहने और देर रात एवं सुबह के समय कहीं कहीं हल्का कोहरा पड़ने की संभावना जताई है। साथ ही पश्चिमी उत्तर प्रदेश में 27 फरवरी को कहीं कहीं गरज चमक के साथ बौछारें पड़ने का अनुमान है। विभाग के पूर्वानुमान के मुताबिक अगले 48 घंटों के दौरान अधिकतम तापमान 2 से 5 डिग्री सेल्सियस बढ़ने की संभावना है। वहीं अगले 5 दिनों के दौरान न्यूनतम तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की गिरावट आ सकती है। राज्य सरकार प्रदेश के सभी 57,000 से अधिक ग्राम पंचायतों में एक एक सूर्य सखी की तैनाती करेगी। इसके लिए राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत लाखों महिलाओं द्वारा स्थापित उद्यमों को अब वितरित अक्षय ऊर्जा उत्पादों से जोड़ा जाएगा। उत्तर प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के निदेशक दीपा रंजन ने बताया कि पहले चरण में 10,000 उद्यमों को सोलर आधारित तकनीकों से जोड़ने का लक्ष्य रखा गया है। समाचार समाप्त हुए, नमस्कार।